جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں آنکھوں کا آنا. یہ جو آنکھیں آتی ہیں کس کے کارن سے آتی ہیں؟ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں آ گیا. ویکتی کو وداؤٹ نمت کے آنکھیں نہیں آتی. ویکتی ویکتی سے جب ملے گا اور اس ویکتی سے ملے گا جو بیمار ہے آنکھوں سے, اس ویکتی سے جب ملتا ہے تو اس کے لیے آنکھیں آ جاتی ہیں. یہ کس کا پربھاؤ ہے؟ سن رہے ہیں؟ یہ کس کا پربھاؤ ہے؟ یہ سنگتی کا پربھاؤ ہے, ہے نا؟ سنگتی کا پربھاؤ ہے. سنگتی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سنگتی اگر الٹی مل جاتی ہے تو ویکتی الٹا بن جاتا ہے, اور سنگتی اگر سچ مل جاتی ہے, یوگی مل جاتی ہے, اچھی مل جاتی ہے تو ویکتی بھی اچھا بن جاتا ہے. آپ لوگوں کو اچھا بننا ہے کیا برا بننا ہے؟ سوستھ بننا ہے کیا بیمار بننا ہے؟ ابھی آپ لوگ کیسے ہیں, کیسے ہے آپ کا سواستھ ہم پوچھ رہے ہیں. آپ کا سواستھ کیسا ہے ابھی؟ اچھا ہے کیا برا ہے؟ میرے خیال سے تو اچھا تو نہیں ہے. سواستھ اچھا لگتا نہیں آپ کا, اس لیے نہیں لگتا, آپ شریر سے اوشیہ سوستھ ہیں لیکن آتما سے آپ سوستھ ہیں یہ ہم گارنٹی نہیں لے سکتے. دو چیزیں ہیں اس شریر کے بھیتر, ایک جو آنکھوں سے دکھتا ہے, ایک دوسرے کا, اس کا نام ہے شریر. اور اس شریر کے بھیتر جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ستت جو جیوت ہے, یہاں بھی رہتا ہے, اس شریر کے ابھاؤ میں اس کو چھوڑ کر اگلا جنم میں بھی جاتا ہے, وہاں پر بھی کچھ دن تک رہتا ہے, وہاں سے بھی اس شریر کو چھوڑ کر پناہ کسی گتی میں چلا جاتا ہے. چار گتی میں بھٹکنے والا وہ کون ہے, اور جس کو ہم یہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ شریر ہے, اور جو جاتا ہے وہ کون ہے؟ آتما. آتما یعنی ہم. ہم سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہم یعنی آتما. آپ لوگ ابھی تک یہ بھی بات نہیں جانتے ہوں گے, ہم یعنی یہ ہاتھ پاؤں شریر, یہ جو اتنے اونچے ہیں, گورے ہیں اور فلانے ہیں, ہمارا رنگ ڈنگ جو باہر کا ہوتا ہے اسی کو ہم 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 میں 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 ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ شریر کو کچھ بھی ہو گیا تو ہم کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہے, مجھے اچھا نہیں ہو رہا ہے, میرے اوپر بہت سنکٹ ہے, میں بیمار پڑ گیا. یہ لوگ لوک ویوہار میں اس بات کی چرچا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویکتی کہتا ہے میں بیمار پڑ گیا. بیمار کون ہوتا ہے؟ شریر بیمار ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں بیمار پڑ گیا تو میں کس کو کہا؟ آتما کو کہاں کہا؟ شریر کو کہا. اور شریر سو تم ہے کیا؟ نہیں ہے. شریر سو تم نہیں ہے اور آتما سو شریر نہیں ہے. آتما الگ ہے اور شریر الگ ہے. لیکن ایسا کتنا سمے نکل جاتا ہے ہمارا, شریر کو کچھ ہو جائے تو مجھے ہوا, مجھے ہوا, میرا ایسا, میرے لیے ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہم کہتے ہیں کیا نہیں؟ اوشی کہتے. اس سمے میں آتما خیال نہیں آتی, شریر کو ہی मैं समझ करके, हम समझ करके मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत संकट है, ऐसा कहते हैं। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यही ज्ञान न होने से हम लोगों का आज तक संसार में कल्याण नहीं हुआ है। समझ में आ रही है आत्मा की बात? समो शरण में बैठे हैं, देखो भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं आज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। छोड़ करके घर को जाने के लिए मन लगता है? नहीं लगता है। यहीं रहना अच्छा लगता है? तो आज यहीं रहो। समूह शरण में बैठे हैं और आज आप ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं जैसे साक्षात महावीर भगवान के समूह शरण में वही अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिव्य ध्वनि करती थी और उसके पश्चात उस दिव्य ध्वनि को गंधर्व परमिष्टि ग्रहण करके आप लोगों को भगवान ने क्या बोला इसका विश्लेषण करती थी। चतुर्थ काल में ऐसा ही होता था। उसका एक छोटा सा रूप है ये, लेकिन दशलक्षण पर्व आदि में इस प्रकार के समूचरण की रचना करके यदि हम दशलक्षण पर्व हर गांव में मनाएंगे तो कितना बड़ा आनंद आएगा, कितना आएगा, बहुत, कितना महाराज ऐसे क्या हाथ करके बताएं? हाथ करने जैसा है ये। कैसा है यहाँ के लोगों को दशलक्षण पर्व में पूजा के लिए जो बैठे थे उनसे पूछो आपको कैसा लगा 16 दिन? उन्हें कहता है, वो कहते हैं कि ये तो बहुत अद्भुत है, शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ विचार लिखा है लोगों ने, मैंने अभी पढ़ा बैठे बैठे, पत्रिका में निकाल दिया है किसकी क्या क्या अनुभूतियां हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए भी उन्होंने दिया है कि ऐसा आनंद आता है समूह शरण के कारण से। और कोई मुनि महाराज त्यागी यदि गांव में हैं और उनके उपदेश सुनते सुनते दशलक्षण पर्व मनाने में जो आनंद आता है वो कहीं भी आनंद नहीं आता, और पेट वड़गांव में पहली बार आनंद आया। ऐसा आनंद आना चाहिए। दशलक्षण पर्व हमारा सूखा सूखा चला जाता है, हर जगह दशलक्षण पर्व मनाते हैं, वही पुरानी पद्धति, उसमें कोई संशोधन नहीं, उसमें कोई हरा भरापन नहीं, उसमें कोई उत्साह नहीं, उसमें कोई आनंद नहीं, उसमें कोई तरक्की नहीं, विशेष नयापन कुछ भी हमारे लिए लगता नहीं है। दशलक्षण पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए जैन समाज में जैन लोगों को, क्योंकि इसका नाम आध्यात्मिक पर्व है। ये आध्यात्मिक पर्व उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जो, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये दशी धर्म जो मुनियों के जीवन में रहते हैं, ये गुण जो मुनियों के जीवन में रहते हैं, मुनियों के जीवन को याद कर करके श्रावक उसमें से कुछ अंश पाने हेतु एक साल में 10 दिन के लिए वह पूजन के लिए निकालता है, और निकालना चाहिए। लोग जब इस दशलक्षण पर्व को मनाने के लिए अपने मन की तैयारी करते हैं, जब मन को बनाने लगते हैं, तो सबसे पहला एक प्रश्न आता है उनके मन में, और वो महाराज के पास जाते हैं या किसी त्यागी के पास जाकर के ये पूछते हैं, महाराज दशलक्षण पर्व 10 साल मनाना चाहिए कि 1 साल? 10 साल मनाना ही पड़ता है क्या, ऐसा पूछते हैं। क्यों पूछते ऐसा मालूम? उनको कहीं 10 साल का बहुत बड़ा भार पड़ रहा हो। 10 साल बहुत बड़ा भार है और 1 साल जो है उनके लिए बहुत आसान हो गया हो, इसलिए पूछते हैं। ध्यान रखो, ये दशलक्षणिक पर्व जीवन में अपनी आत्मा को जगाने के लिए आता है। एक साल भर में हम जो पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पंच पाप निरंतर प्रतिक्षण, प्रतिसेकंद, प्रतिदिन होते हैं और साल भर होते रहते हैं। साल भर नहीं, जीवन तक करे तो भी ये छूटते नहीं। पंच पाप ऐसे होते हैं। इन पंच पापों में श्रावक का जीवन उलझा रहता है, पाप ही संग्रह हो जाता है। जब पाप की गठरी बढ़ जाती है तो लास्ट में वह वही रह जाए और जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं कमाया है तो परिस्थिति यह उत्पन्न हो जाती है कि हम जहाँ पर आए हैं, जिस भाव में आए हैं, जिस जन्म में आए हैं, इस जन्म से हमारा उत्तान हो रहा है या इससे अधः पतन हो रहा है, सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लास्ट में जीवन बहुत दुर्लभ है। आप लोग मनुष्य पर्याय में आए हैं। ये कौन सा भाव है आपका? आप देव हैं क्या? त्रिरंश हैं क्या? नरक में तो नहीं? नरक में भी नहीं, नारकी भी नहीं। तीन गति में आपकी आत्मा नहीं है। आपकी आत्मा कहाँ है? मनुष्य गति में है। मनुष्य गति के पश्चात आपको कहाँ जाना है? महाराज ये भी मालूम नहीं हमको कहाँ जाना। आप ही बताओ, जहाँ आप कहोगे वहाँ चले जाएंगे। आपको कहाँ जाना है यही पता नहीं अभी? कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। मोक्ष में क्या है? वहाँ वासा वगैरह मिलता है क्या? भोजन वगैरह मिलता है क्या वहाँ? शरीरधारी जीव खाने पीने में मस्त जो रहता है, खाना पीना ही अपना जीवन जिंदगी और वही सुख जो समझता है, वह यह विचार करता है खाने पीने ही में ही मजा है। समझता है क्या? नहीं। लेकिन ये बताओ, खाने पीने में कोई मजा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो घर जाकर के आज नहीं खाना है, एक दिन उपवास करके देख लो तो मोक्ष मिल जाएगा। खाने पीने में सुख नहीं है, लेकिन जीव समझता है खाने पीने में सुख है। वस्तुतः देखो तो खाने पीने में मजा नहीं है। 24 तीर्थंकर जो थे, उन्होंने खाने पीने के सुख को भी त्याग दिया। एक बार आहार उनका, वह भी महीनों महीनों तक उपवास किया। इतने उपवास करने की क्या जरूरत थी? कहाँ जाना था उनको? मोक्ष जाना था। तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी के इंद्रिय, सारी इंद्रिय सुख को, सारे इंद्रिय सुखों को दांव पर लगा दिया। आपके दिगंबर महाराज भी ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। दिगंबर महाराज दिगंबर ही होते हैं ना? शरीर से ही केवल दिगंबर? क्या आत्मा से भी दिगंबर? शरीर से दिगंबर होना आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन केवल शरीर से दिगंबर होना ये मुनिपना नहीं है। अंदर से भी दिगंबर होना आवश्यक है। अंदर से कैसे दिगंबर हो जाए? तो ऐसा दिगंबर होना, दिगंबर बनते समय जिस जिस वस्तु को त्यागने का संकल्प लिया था, कितने वस्तु त्यागी थी? 10 वस्तु त्यागी थी। बाहर के 10 पदार्थ, मकान, दुकान, सोना, चांदी, नौकर, चाकर, धन, धान्य वस्त्र और भांडी बर्तन सब त्यागे थे। मुनि महाराज 10 पदार्थ त्यागते हैं मुनि बनने के लिए, धन भी त्यागते हैं क्या नहीं त्यागते। मुनि तो बन गए लेकिन बनने के बाद पुनः जिसको त्यागा था उसी के प्रति कामना जग गई, आशा हो गई और धन की इच्छा हो गई, धन को इकट्ठा किया, संग्रह किया, उस कार्य में लग गए। और आप लोगों जैसे लोग जो धन की चाह हमेशा रखते हैं और अपने दुखड़े को व्यक्त करते हुए आप सामने आते हैं गुरुओं के, कहते हैं महाराज हम निर्धनी हो गए, जीवन संकट में है और हमारे लिए कुछ ऐसा जादू कर दो, कहते कि नहीं कहते? ऐसे भी श्रावक है कि नहीं? हाँ, दुखड़ा व्यक्त करते हैं मुनि महाराज के सामने जाकर, जिनने सब कुछ छोड़ दिया है उनके पास जाकर धन के अभाव के दुखड़े को व्यक्त करके वो कहते हैं महाराज हमारे लिए भी कुछ धन मिले, ऐसा कुछ जादू कर दो, मंत्र टोना कर दो। सोचो महाराज ने अगर मंत्र तंत्र किसी को दे दिया और उसके बल पर कोई साहूकार बन गया तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठोस विश्वास है। अच्छा, ये कैसे विश्वास कर लेते हैं? मंत्र तंत्र हमारे लिए धन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं ना? तो महाराज से मंत्र लेना व्यर्थ है क्या सार्थक है? व्यर्थ है? पक्का 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 ये नक्का पक्का ये पक्का है कि कोई भी मंत्र किसी को सुखी नहीं बना सकता। तो हम अपने जीवन में सुखी जो बनते हैं वो किसकी देन है? ये सोचो, किसकी देन है? कोई कहता है धर्म की देन है, कोई कहता है पुण्य की देन है, कोई कहता है दुकान की देन है, कोई कहता है हमारे यहाँ 4 भैंस हैं उनकी देन है, दूध देते हैं हम रोज दूध निकाल करके बेच देते हैं और पैसा बहुत आता है, हम आराम से सुख में हैं, भैंस की देन है। असल में इन सभी बातों में कौन सी बात सच है? हाँ, किसकी देन है ये? हाँ, महावीर भगवान ने तो कहा है, उनके समोशरण में यही वाणी खिरी थी, प्रत्येक जीवात्मा चाहे वो तिर्यंश हो, नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, दरिद्र हो, सावकार हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, उनके लिए जो उनके जीवन में सुख और दुख की घटनाएं सामने आती हैं, ये घटनाएं सारी की सारी पुण्य और पाप का खेल है। ये सत्य है कि नहीं? अकाट्य सत्य है या जरा कमी सत्य है? अकाट्य सत्य। अपने जीवन में सुख और दुख की जो भी घटनाएं आती हैं वो सारे के सारे, दुख अगर हो रहा है तो पाप का उदय चल रहा है ये समझना चाहिए, सुख अगर मिल रहा है तो पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए सुख मिलता जा रहा है ये समझना चाहिए। इसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं होता। भैंस को निमित्त बनाता है कोई, पाल लेता है, 4 भैंसे पाल रहा है, और उसको आहार खिला रहा है और रोज दूध निकाल रहा है, बेच रहा है, भैंसों के दूध पर वह लखपति बन जाता है, लक्षाधिपति बन जाता है, तो वह भैंस निमित्त है या पुण्य निमित्त है? पुण्य निमित्त। पुण्य के उदय में भैंसे हैं, पुण्य के उदय में भैंसे हैं और भैंसे दूध देती हैं, वह बेचता है, धन आता है, ये सब कुछ पुण्य का ही खेल माना जाता है। अगर किसी दिन दो भैंसे मर गई तो अकस्मात, नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं चला, भैंस ने दो दिन दूध नहीं दिया, जाकर के निकालने के लिए बैठते थे और वह पैर मार देती थी, हमको दूध निकालने नहीं देती थी, और वह भैंस दो दिन तो दूध नहीं दिया और दो दिन भोजन नहीं किया, घास नहीं खाया, और तीसरे दिन अकस्मात ही मर गई, दोनों एक साथ मर गईं, दो भैंसे। तो भैंस को कोई न कोई बीमारी तो होना ही चाहिए, ऐसी एकाएक ही कोई भैंस, स्वस्थ भैंस तो मर नहीं सकता। भैंस को बीमारी आई, वो भी जीव है, त्रिंच है, बीमारी जो हो गई उसको, वो कौन सा कर्म? पाप कर्म। और दो भैंसे मर गई एक किसान के, इनको कौन सा कर्म? इनका भी पाप कर्म, इनको भी पाप कर्म है, भैंसों को भी पाप कर्म है। पाप कर्म, पाप कर्म दोनों आकर के जब आपस में टकराते तो एक्सीडेंट हो जाता है। किसान रोने लगता, मेरी दो भैंसे मर गई, रोना आता है, इतनी अच्छी भैंसे, 10-10, 15-15 लीटर दूध देने वाली भैंसे, आज दोनों मर गई, कौन सा दुर्भाग्य है मेरा, कौन सा पाप कर्म का उदय, पश्चाताप करता है। ये पाप कर्म का उदय है क्या? नहीं, पाप कर्म का उदय है, हमारे सुख के लिए हम बाहरी साधन ढूंढते हैं, गाय भैंस पालते हैं, खेत खरीदते हैं, दुकान चलाते हैं, दुकानों की संख्या बढ़ाते हैं, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने लगते हैं, बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से हम चलाने लगते हैं, बुद्धि चला चला करके हम व्यापार करने लगते हैं, तो वो लाभ मिलता है, और लाभ जब मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और वास्तव में वो भाग्यशाली है, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर वह सुखी हो रहा है तो भाग्यशाली, और बहुत कुछ मेहनत करता है, रात दिन एक कर रहा है और सुखी नहीं हो रहा है तो वह दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्य का अर्थ होता है पाप और भाग्य का अर्थ होता है पुण्य। ये पुण्य और पाप हम जिंदगी में कमाते हैं, इस जिंदगी में कमाते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पाप और पुण्य कमाते हैं, और ये पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए परभव में चलते हैं, आत्मा के साथ, शरीर नहीं चलता। देखो, ध्यान से सुनो, ऊंगना नहीं है, सोने का समोसरण है, यहाँ नहीं सोने का, सोने का समोसरण है, यहाँ नहीं सोने का, सोने का नहीं, सोने का समोसरण है। जब ये सुख दुख की घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं, तो इन घटनाओं को देख करके हमारे पास कितना पुण्य है और कितना पाप, ये पता चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इस दुखड़े को लेकर के किसी साधु के सामने जाकर हमने एक मंत्र मांगा, तो वह वह मंत्र हमारे लिए सुख देने में सक्षम हो सकता है क्या? हाँ? सक्षम नहीं हो सकता। अगर सक्षम होता है ये कहेंगे तो फिर भैंस पालने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, उस देवता का मंत्र लेना और जाप करते हुए बैठना, ओम देवतायै नमः, संपत्तिम संपत्तिम भवतु, धनम भवतु, गाय भैंसे सभी भवतु, ओम नमः ओम नमः ओम देवतायै नमः, बैठना छोड़ना नहीं, जब तक संपत्ति धन आएगा नहीं, चार उपास करना पड़े, दस उपास करना पड़े, जपना ही जपना, जपना ही जपना, उठना ही नहीं। आ जाएगा नहीं आएगा, गला सूख जाएगा, उपवास फुकट में जाएंगे, थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, लेकिन धन कभी भी मंत्र के माध्यम से आए